नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, केट डार्लिंग की द न्यू ब्रीड। व्हाट आवर हिस्ट्री विद एनिमल्स रिवील्स अबाउट आवर फ्यूचर विद रोबोट्स। रोबोटिक्स कानून, नैतिकता और समाज पर केंद्रित एक विश्लेषणात्मक गैर कथा पुस्तक है। इसका मुख्य तर्क प्रचलित विज्ञान कथा वाली धारणा को चुनौती देता है कि रोबोट मनुष्यों जैसे बनेंगे और अंततः मनुष्यों की जगह ले लेंगे। डार्लिंग के अनुसार अधिक उपयोगी तुलना मनुष्य और पशु के लंबे साझे इतिहास से मिलती है। घोड़े, कुत्ते और अन्य पशु मनुष्य के समान नहीं थे, फिर भी उनकी अलग क्षमताओं ने काम, परिवहन, सुरक्षा और साथ निभाने के नए रूप संभव किए। पुस्तक इसी दृष्टि से रोबोटों को कार्य विशिष्ट पूरक साझेदारों के रूप में देखने का प्रस्ताव रखती है। साथ ही यह चेतावनी देती है कि लोगों का मशीनों से भावनात्मक जुड़ाव डिजाइन, जिम्मेदारी, श्रम और सार्वजनिक नीति के लिए वास्तविक प्रश्न पैदा करेगा। पुस्तक का उद्देश्य रोबोटों के प्रति न अंधा भय पैदा करना है, न अंधा उत्साह, बल्कि अधिक सटीक और जिम्मेदार सामाजिक समझ विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मानव जैसे रोबोट की धारणा के बजाय पशु साझेदारी का ढांचा। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार यह है कि रोबोटों को मनुष्य की प्रतिकृति मानना भ्रामक है। लोकप्रिय संस्कृति अक्सर बोलने, सोचने और विद्रोह करने वाली मानवाकार मशीनों की छवि प्रस्तुत करती है। इस छवि के कारण चर्चा तुरंत इस प्रश्न पर पहुंच जाती है कि रोबोट किस मानव नौकरी, बुद्धि या रिश्ते को छीनेंगे। डार्लिंग कहती है कि यह तुलना तकनीकी क्षमताओं और सामाजिक विकल्पों दोनों को संकीर्ण बना देती है। अधिकांश रोबोट किसी एक सीमित काम में उपयोगी होंगे, जैसे निरीक्षण, सफाई, सहायता, खोज या निगरानी। वे मनुष्य जैसी सामान्य समझ, शारीरिक अनुकूलनशीलता और सामाजिक निर्णय क्षमता का पूर्ण विकल्प नहीं है। पशुओं के साथ तुलना इसलिए उपयोगी है कि मनुष्यों ने ऐतिहासिक रूप से भिन्न क्षमताओं वाले जीवों के साथ सहयोग करना सीखा है। घोड़े ने परिवहन और शक्ति दी, कुत्तों ने सुरक्षा, खोज और साथ दिया, पर दोनों को मानव बनने की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार रोबोटों का मूल्य उनकी मानव समानता में नहीं, बल्कि उनकी अलग और पूरक उपयोगिता में हो सकता है। यह ढांचा रोबोट के रूप, व्यवहार और भूमिका को अधिक व्यावहारिक ढंग से समझने में मदद करता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि रोबोट सचमुच जीवित पशु है। वे मनुष्यों द्वारा डिजाइन, स्वामित्व और नियंत्रित तकनीकी वस्तुएं हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अंततः लोगों और संस्थाओं पर ही रहती है। दूसरा, प्रतिस्थापन नहीं, मानव क्षमता के पूरक के रूप में स्वचालन। डार्लिंग रोजगार पर होने वाली रोबोटिक्स बहस में प्रतिस्थापन की भाषा पर विशेष प्रश्न उठाती है। जब हर तकनीक को कर्मचारी हटाने के साधन के रूप में देखा जाता है, तब तकनीकी विकास का एक ही परिणाम मान लिया जाता है। पुस्तक के अनुसार रोबोटों को इस तरह भी विकसित किया जा सकता है कि वे लोगों को अधिक सुरक्षित, सक्षम और प्रभावी बनाएं। यह अंतर केवल मशीन की तकनीकी विशेषता से नहीं बनता, बल्कि निवेश, संगठनात्मक निर्णय और सार्वजनिक नीति से बनता है। उदाहरण के लिए, किसी कार्य के थकाऊ, जोखिमपूर्ण या अत्यधिक दोहराव वाले हिस्से को मशीन संभाल सकती है, जबकि मनुष्य निर्णय, देखभाल, अपवादों की समझ और जवाबदेही वाले हिस्सों पर ध्यान दे सकता है। पशु साझेदारी का इतिहास फिर उपयोगी संकेत देता है। पशुओं ने अनेक क्षेत्रों में मानव श्रम का ढांचा बदला, पर उनका उपयोग केवल मानव को निष्कासित करने के लिए नहीं था। उन्होंने ऐसी नई व्यवस्थाएं भी बनाई जिनमें अलग अलग क्षमताएं मिलती थी। पुस्तक इस बात को रोमानी ढंग से प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि पशुओं के उपयोग में शक्ति और शोषण के प्रश्न भी रहे हैं। फिर भी इसका केंद्रीय आग्रह स्पष्ट है। समाज को यह पूछना चाहिए कि किस प्रकार के रोबोट बनाए और खरीदे जा रहे हैं, किसके काम को बेहतर बनाया जा रहा है और लाभ तथा नियंत्रण किसके पास जा रहे हैं। स्वचालन का परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं, राजनीतिक और आर्थिक चुनावों से निर्मित होता है। तीसरा, जीवंत दिखने वाली मशीनों से भावनात्मक लगाव का सामाजिक महत्व। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह समझना है कि लोग रोबोटों के प्रति भावनाएं क्यों महसूस करते हैं। मनुष्य निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, खिलौनों और प्रतीकों में भी इरादा, व्यक्तित्व या संवेदना देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब कोई रोबोट हिलता है, प्रतिक्रिया देता है, आंखों जैसा संकेत देता है या परिचित व्यवहार करता है, तो यह प्रवृत्ति और मजबूत हो सकती है। डार्लिंग के लिए यह केवल एक मनोरंजक मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह डिजाइन और नीति का मुद्दा है, क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया लोगों के निर्णयों, भरोसे और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। कोई व्यक्ति सहायक रोबोट से लगाव महसूस करे, उसकी खराबी पर दुखी हो या उसके साथ कठोर व्यवहार देखकर असहज हो, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि रोबोट सचेत या पीड़ित है, लेकिन यह अवश्य दिखाता है कि रोबोट मानव संबंधों और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए डिजाइनरों को यह सोचना चाहिए कि मशीन का रूप और व्यवहार किस तरह अपेक्षाएं पैदा करता है। उपयोगकर्ताओं को भी यह समझना चाहिए कि स्नेहपूर्ण प्रतिक्रिया और वास्तविक नैतिक चेतना एक ही बात नहीं है। पुस्तक भावनात्मक जुड़ाव को ना तो मूर्खता कहकर खारिज करती है, ना उसे मशीन के अधिकारों का स्वतः प्रमाण मानती है। वह इसे मानव मनोविज्ञान, देखभाल की जरूरतों और तकनीकी डिजाइन के संगम पर उत्पन्न वास्तविक सामाजिक घटना मानती है। चौथा, रोबोटों के लिए कानून और जवाबदेही में मानव नियंत्रण की अनिवार्यता। जैसे जैसे रोबोट सार्वजनिक और निजी जीवन में प्रवेश करेंगे, कानूनी प्रश्न केवल तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं रहेंगे। यदि कोई स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त मशीन नुकसान पहुंचाती है, भ्रामक व्यवहार करती है या किसी कमजोर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका लेने लगती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? डार्लिंग का व्यापक दृष्टिकोण यह है कि रोबोट को मनुष्य जैसा स्वतंत्र कानूनी व्यक्ति मान लेने से समस्या हल नहीं होती। मशीनों के पीछे निर्माता, मालिक, संचालक, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, सेवा देने वाली संस्थाएं और नियामक निर्णय होते हैं। इसलिए जवाबदेही को उन मानव और संस्थागत व्यवस्थाओं तक वापस ले जाना आवश्यक है। पशुओं के साथ हमारे संबंध यहाँ एक उपयोगी लेकिन सीमित मिसाल देते हैं। पशु स्वायत्त व्यवहार कर सकते हैं, फिर भी समाज उनके स्वामित्व, नियंत्रण, प्रशिक्षण और नुकसान की जिम्मेदारी के नियम बनाता है। रोबोटों के लिए भी जोखिम, उपयोग क्षेत्र और नियंत्रण के स्तर के अनुसार नियमों की जरूरत होगी। खासकर देखभाल, सुरक्षा, सैन्य उपयोग और श्रम जैसे क्षेत्रों में यह प्रश्न अधिक गंभीर है। पुस्तक का योगदान तैयार कानूनी सूत्र देना नहीं बल्कि गलत प्रश्नों से बचाना है। यदि हम रोबोट को स्वयं नैतिक या कानूनी जिम्मेदार एजेंट मानकर मानव संस्थाओं की भूमिका धुंधली कर दें, तो शक्ति और उत्तरदायित्व दोनों छिप सकते हैं। बेहतर नीति मशीन की कथित व्यक्तित्वता से अधिक उसके वास्तविक प्रभाव, डिजाइन और मानव नियंत्रण पर ध्यान देगी। अंत में, रोबोटिक्स का भविष्य तकनीकी नियति नहीं, सार्वजनिक चुनाव का परिणाम द न्यू ब्रीड तकनीकी नियतिवाद का विरोध करती है। तकनीकी नियतिवाद वह धारणा है कि नई मशीनें आने पर समाज को अनिवार्य रूप से उनके अनुसार ढलना ही पड़ेगा। डार्लिंग इसके बजाय दिखाती है कि रोबोटों के उपयोग का रूप सामाजिक प्राथमिकताओं से तय होता है। वही क्षमता किसी कार्यकर्ता को सहारा देने, निगरानी बढ़ाने, लागत घटाने, देखभाल सुधारने या मानव संपर्क कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अतः मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं है कि रोबोट क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह भी है कि उन्हें किस समस्या के लिए, किन नियमों के भीतर, किसके हित में और किन विकल्पों के स्थान पर लागू किया जा रहा है। पशुओं के साथ इतिहास इस चुनाव की जटिलता दिखाता है। मनुष्यों ने पशुओं को परिवार के सदस्य, श्रम के साधन, संपत्ति, साथी और युद्ध के संसाधन जैसे अनेक विरोधाभासी रूपों में रखा है। रोबोटों के साथ भी उपयोगिता, लगाव, नियंत्रण और शोषण एक साथ मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए पुस्तक इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के बीच व्यापक संवाद की आवश्यकता पर बल देती है। तकनीकी निर्णयों को केवल दक्षता या नवीनता के आधार पर नहीं परखा जा सकता, उनमें श्रम की गरिमा, सुरक्षा, पहुंच, निजता, देखभाल और शक्ति के वितरण जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। पुस्तक पाठक को भयावह भविष्यवाणी देने के बजाय यह बौद्धिक जिम्मेदारी देती है कि बेहतर मानव रोबोट संबंधों के लिए सामूहिक विकल्प अभी से किए जाए। निष्कर्ष में, द न्यू ब्रीड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो रोबोटिक्स, AI, स्वचालन, तकनीकी नीति, डिजाइन या डिजिटल नैतिकता को केवल तकनीकी उपलब्धियों की सूची से आगे समझना चाहते हैं। यह इंजीनियरों और उत्पाद डिजाइनरों को याद दिलाती है कि मशीन का सामाजिक अर्थ उसके कार्य से ही नहीं, उसके रूप, व्यवहार और उपयोग की परिस्थितियों से भी बनता है। नीति निर्माताओं और प्रबंधकों के लिए इसकी उपयोगिता इस प्रश्न में है कि स्वचालन को किस प्रकार मानव क्षमता बढ़ाने, जोखिम घटाने और जवाबदेही बनाए रखने के लिए निर्देशित किया जाए। आम पाठक के लिए यह पुस्तक रोबोटों के बारे में दो अतियों से दूरी बनाने का अवसर देती है, एक और विनाशकारी मशीनों का भय और दूसरी ओर तकनीक को स्वतः लाभकारी मानने का उत्साह। समान विषय की अनेक पुस्तकों में चर्चा मानव जैसी बुद्धि, चेतना या दूरस्थ भविष्य की भविष्यवाणियों पर केंद्रित रहती है। डार्लिंग की पुस्तक इससे अलग पशुओं के साथ मानव इतिहास को एक सोचने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। यह तुलना रोबोट को जीवित प्राणी घोषित नहीं करती बल्कि अलग क्षमताओं, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और नियंत्रण संबंधों को समझने का व्यावहारिक ढांचा देती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही संतुलन है। पुस्तक रोबोटों की सीमाओं को स्वीकारते हुए उनके संभावित लाभों पर विचार करती है और हर चरण पर यह स्पष्ट रखती है कि डिजाइन, स्वामित्व, कानून और उपयोग के चुनाव मानवीय है। इसलिए यह भविष्यवाणी से अधिक विवेकपूर्ण सार्वजनिक सोच की पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केट डार्लिंग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।